समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह और शुरुआत कर चुके हैं हम न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे का, और आकाशवाणी गोल्ड पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आज के इस अंक के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और मेरे साथ हैं शेफाली। नमस्कार शेफाली।
हेलो देवेंद्र, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। सो डियर लिसनर्स, टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड विंड डे। विंड के बारे में हम कह सकते हैं, हु हैज सीन द विंड, नाइदर आई नॉर यू, बट व्हेन द लीव्स हैंग ट्रेम्बलिंग द विंड इज पासिंग थ्रू। सो चलिए आज की ताजी सुबह की शुरुआत भी एक ताजी हवा के झोंके के साथ करते हैं। वी ब्रिंग यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेयर इन वी ब्रिंग यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज 15th June 2024। सो लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस देवेंद्र
जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने प्रतिरक्षा और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की और आशा व्यक्त की कि रक्षा संबंधी औद्योगिक सहयोग में और अधिक वृद्धि होगी। दोनों नेताओं ने भारत और इटली के बीच रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा, विनिर्माण, अंतरिक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, यांत्रिक बुद्धिमत्ता और महत्वपूर्ण खनिजों में वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने हाल ही में औद्योगिक संपदा अधिकार संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत किया। ये ज्ञापन पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क में सहयोग का खाका पेश करेगा। श्री मोदी और सुश्री मेलोनी ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए सहयोग के आशय पत्र पर हस्ताक्षर का भी स्वागत किया। उन्होंने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप आर्थिक गलियारे सहित वैश्विक मंचों पर बहुपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ भी बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सहित कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक सहयोग बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत जॉर्डन के साथ अपने संबंधों को मजबूत और महत्वपूर्ण मानता है। श्री मोदी पोप फ्रांसिस से भी मिले। उन्होंने जनसेवा और इस पृथ्वी को बेहतर बनाने के लिए पोप की प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। श्री मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से भी मुलाकात की।
Prime Minister Narendra Modi held a bilateral meeting with Japan's Prime Minister Fumio Kishida yesterday on the sidelines of the G7 summit in Apulia, Italy. Mr. Modi said that bilateral ties with Japan will continue to receive priority in his third term. India and Japan are collaborating on several important areas, including the landmark Mumbai-Ahmedabad high-speed rail project and India-Japan Industrial Competitiveness Partnership. The meeting between the two prime ministers provided an opportunity to review some of these ongoing works of cooperation. On the auspicious occasion of Jyeshth Ashtami, Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir Manoj Sinha laid the foundation stone for Yatri Bhavan at Mata Khir Bhavani Temple in Tulmula in central Kashmir's Gandharbal district yesterday. The Lieutenant Governor paid obeisance to Mata Khir Bhavani and prayed for peace, prosperity, happiness and well-being of one and all. He interacted with the devotees and extended his heartiest greetings on the auspicious occasion. Addressing the media persons, the Lieutenant Governor reiterated the commitment of the UT administration to augment the facilities for the devotees of Mata Khir Bhavani. Delhi Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena has granted sanction to prosecute author Arundhati Roy under Unlawful Activities Prevention Act, UAPA. She, along with former professor in Central University of Kashmir, Dr. Sheikh Shaukat Hussain have been sanctioned for prosecution under Section 45 of UAPA for their alleged provocative speech at an event in New Delhi in 2010. The FIR in the matter was registered on a complaint by Sushil Pandit, a social activist, in 2010. The complainant had alleged that Ms. Roy and Mr. Hussain made provocative speeches at a conference organized under the banner of Azadi, the Only Way in October 2010 in New Delhi.
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि उच्च शिक्षा संस्थानों को सभी निरस्त दाखिलों या माइग्रेशन के मामले में 30 सितंबर तक पूरी फीस लौटानी होगी। आयोग की यह नीति चालू शिक्षा सत्र के लिए है। आयोग ने यह कदम दाखिला रद्द करने या नाम वापस लेने पर फीस लौटाने के संबंध में छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों को देखते हुए उठाया है। यह नीति केंद्रीय या राज्य अधिनियमों के तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों, आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थानों, सम विश्वविद्यालयों और दाखिला परामर्श में शामिल संगठनों पर लागू होगी। आयोग ने यह भी कहा कि इस वर्ष 30 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच रिफंड जारी किया जाएगा और प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में अधिकतम 1000 रूपये की कटौती की जा सकेगी। 31 अक्टूबर के बाद के दाखिले के लिए अक्टूबर 2018 के प्रावधान लागू होंगे। आयोग ने कहा है कि इस नीति का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
A two-day Nepal International Tourism Expo, NIT, kick-started in Kathmandu Valley yesterday. It has been organized to promote Nepal's tourism in the international market. Inaugurating the fair, Minister for Culture, Tourism and Civil Aviation, Hit Bahadur Tamang, expressed the belief that the fair would be fruitful in promoting Nepal's tourism worldwide. Minister Tamang underscored that the ministry has been carrying out activities with a commitment to fulfill the government's goal of bringing in at least 1.6 million tourists this year by resolving problems seen in the tourism sector, sharing that activities are underway to waive VAT and other unnecessary taxes imposed on air tickets.
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4,307 करोड़ डॉलर बढ़कर अपने उच्चतम स्तर 655,817 करोड़ डॉलर हो गया है। इसके पिछले सप्ताह में मुद्रा भंडार 4,837 करोड़ डॉलर बढ़कर 651,51 करोड़ डॉलर का हो गया था। मुद्रा भंडार का पिछला उच्चतम स्तर 10 मई को 648,87 करोड़ डॉलर का हुआ था। विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले कुछ हफ्तों में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है।
And now news from the sports world. In Euro Cup 2024, Germany defeated Scotland in spectacular fashion by 5-1 in the inaugural match at Allianz Arena Football Stadium in Munich last night. This was the biggest opening match victory in European Championship history. Kai Havertz, Florian Wirtz and Jamal Musiala scored in the first half for the hosts. Later, Niklas Füllkrug and Emre Can added gloss to the scoreline in the second half. Antonio Rudiger's own goal in the 87th minute was nothing more than a consolation for Scotland fans. Today, Hungary will take on Switzerland in Group A in Cologne, while Spain will lock horns with Croatia in Group B in Berlin.
और आईसीसी टी20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में आज भारत अपने आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में कनाडा से खेलेगा। ये मैच फ्लोरिडा में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल आयरलैंड के साथ मुकाबला रद्द हो जाने के बाद अमरीका ने सुपर 8 में जगह बना ली है और ये पहला मौका है जब अमरीका सुपर 8 में पहुंचा है। भारत के बाद अमरीका ग्रुप ए की दूसरी टीम है जो सुपर 8 में पहुंची है। पूर्व चैंपियन पाकिस्तान और आयरलैंड सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो गए हैं।
In tennis, Indian star player Sumit Nagal has advanced to the semi-finals in the men's singles of an ATP Challenger tournament in Perugia, Italy. Sumit defeated Max Kasnikowski of Poland 6-4, 7-5 in the quarterfinal in Perugia today. Sixth seed Nagal continued his superb form, winning the eighth consecutive match in 10 days. He will take on unseeded Bernabe Zapata Miralle of Spain in the semi-finals today.
और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बाद अब हम रुख करते हैं अपने मेट्रोज का, मेट्रो सिटीज का। तो चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से खबरें क्या हैं शेफाली आपके पास?
जी, न्यूज फ्रॉम चेन्नई। द मद्रास हाई कोर्ट हैज वंडर्ड वेदर लैब्राडोर रिट्रीवर डॉग ब्रीड्स कैन बी क्लासिफाइड एज फेरोशियस एंड बैंड सिंस अ चाइल्ड वॉज अटैक्ड बाय द डॉग इन अ रीसेंट इंसिडेंट। जस्टिस अनीता सुमन सेड दैट आइडेंटिफाइंग फेरोशियस डॉग ब्रीड्स शुड बी अ कलेक्टिव प्रोसेस एंड इट शुड बी कंटेन्ड। The court made the observation while hearing a plea moved by Kennel Club of India against the notification issued by the Union Government banning import and breeding of certain dog breeds in the country. In another news from Chennai, Chennai Metro Rail Limited has given advertising rights to a private firm to put up advertising rights to Mudra Ventures through a tender process. The CMRL said that this will be one of the major alternative revenue generations for CMRL, along with other mediums of advertising and retail and office-based portfolios, which would help in covering the operational expenses. It would float a tender for piers and portal advertising rights for new Washermanpet Vimco Nagar depot metro alignment shortly. News from Bengaluru Metro. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has underscored the need to improve the Human Development Index in Kalyan Karnataka region, which comes in the northeast part of the state. While reviewing the progress of programs of Kalyan Karnataka Regional Development Board in a meeting in Bengaluru yesterday, the Chief Minister noted that emphasis should be laid on areas lagging behind and the living conditions should improve in this region. He said infrastructure development must be one of the priorities. He asked the district in charge ministers and district in charge secretaries to review the progress in the region once in a month and report to the board. And now news from Hyderabad Metro. In Telangana, the Cyberabad Traffic Police, in partnership with Society for Cyberabad Security Council, has announced deployment of Third Eye Traffic Monitoring Drone capability. The Cyberabad Traffic Police informed that the cutting-edge unmanned aerial surveillance vehicle sets in motion a significant stride towards enhanced traffic management system in the region. The Third Eye Traffic Monitoring Drone will enable real-time updates of traffic flow and related issues, allowing traffic police teams to address them rapidly and ensure smoother and commuting for road users. An official release stated that the Third Eye will optimize traffic management strategies, ultimately contributing to improved road safety and efficiency across Cyberabad police limits. And now for news from Delhi, Mumbai and Kolkata, we move over to you, Devendra.
Ji, रविवार को सिविल सेवा परीक्षा के चलते दिल्ली मेट्रो की रेड, ब्लू, ग्रीन, पिंक और मजेंटा लाइन पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएंगी। दिल्ली रेल निगम ने बताया कि परीक्षा देने वालों की सहूलियत के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसी बीच दिल्ली गाजियाबाद आरआरटीएस कॉरिडोर पर नमो भारत रेल सेवाएं भी सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएंगी। नमो भारत के संचालित खंडों पर रविवार को रेल सेवाएं सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक के लिए उपलब्ध रहेंगी। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 200 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। यह शिविर भारतीय तटरक्षक बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और दिल्ली पुलिस के सहयोग से आयोजित किया गया। एम्स ने सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें दूसरों का जीवन बचाने के लिए सुपर हीरो बताया। राजधानी में मनोरंजन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली नगर निगम ने लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इसके अंतर्गत बैंकेट हॉल, खानपान की दुकानें, अस्थायी जगहों पर टेंट और खुले स्थानों पर मनोरंजन जैसी गतिविधियों के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। संगीत, गायन, नृत्य और वर्चुअल प्रदर्शनी जैसी गतिविधियों के आयोजन के लिए भी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इसके लिए निगम ने पंजीकरण शुल्क 15,000 रूपये और वार्षिक शुल्क 10,000 रूपये निर्धारित किया है। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 20 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। विशेष सेल ने एक बयान में कहा है कि इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो नाइजीरिया और आइवरी कोस्ट के हैं। दोनों दिल्ली एनसीआर से देश के विभिन्न हिस्सों में ड्रग्स की आपूर्ति करते थे। गिरफ्तारी के दौरान लगभग 6 किलोग्राम मेथमफेटामाइन जब्त किया गया है। जांच से पता चला है कि ये दोनों अवैध दस्तावेजों का प्रयोग कर भारत में रह रहे थे। और मुंबई का रुख करें तो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल MIFF आज से शुरू हो रहा है। मुंबई में ये आयोजन इस महीने की 21 तारीख तक किया जाएगा। ये फिल्म महोत्सव, बिली एंड मॉली एंड ओटर लव स्टोरी जैसी फिल्मों की स्क्रीनिंग से प्रारंभ होगा। ये फिल्म आज दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में एक साथ प्रदर्शित की जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि वार्षिक आषाढ़ी एकादशी पालकी जुलूस में भाग लेने वाले भगवान विट्ठल के भक्त वारकरियों को 20,000 रूपये की सब्सिडी दी जाएगी। पंढरपुर तीर्थयात्री यात्रा की पूर्व योजना के लिए सह्याद्री राज्य अतिथि गृह में उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल की मौजूदगी में एक विशेष बैठक की गई। डाक विभाग ने कल मुंबई के जनरल पोस्ट ऑफिस में आयोजित एक समारोह में प्रसिद्ध कवि और गीतकार गुलजार और प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल की उपस्थिति में फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के काम की मान्यता में एक विशेष कवर जारी किया। भारत की अनूठी और विविध फिल्म विरासत को संरक्षित करने, पुनर्स्थापित करने और इसका उत्सव मनाने के लिए फाउंडेशन द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को मान्यता देने के लिए यह विशेष कवर जारी किया गया है। विशेष कवर का सीमित संस्करण मुंबई में जनरल पोस्ट ऑफिस के फिलैटली ब्यूरो में उपलब्ध रहेगा। और कोलकाता का रुख करें तो पश्चिम बंगाल की सभी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कल से बंद कर दिए जाएंगे। जंगली जानवरों की प्रजनन गतिविधियों और जंगलों में अंकुरण के कारण हाथी सफारी सहित सभी पर्यटन गतिविधियों और सफारी पर 3 महीने के लिए प्रतिबंध रहेगा। जंगल 15 सितंबर से फिर से खोल दिए जाएंगे। इस संबंध में वन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। और अब महानगरों के मौसम का हाल हम अपने श्रोताओं को बताते हैं। राजधानी दिल्ली के मौसम की बात करें तो यहां पर भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बना हुआ है और आज भी जारी रहने की आशंका है। अधिकतम तापमान 44 डिग्री रिकॉर्ड किया जा सकता है जबकि न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। दिन में आंशिक बादल छा सकते हैं, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। महानगरी मुंबई में सुबह का तापमान 26 डिग्री रहा, दिन में पारा 33 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और कोलकाता में घने बादल तो नहीं होंगे लेकिन हल्के बादल अब दिखने शुरू हो सकते हैं। यहां पर मॉनसून का इंतजार हो रहा है, कहीं पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। तापमान 37 और 29 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। और शेफाली, बाकी महानगरों में कैसा रहेगा मौसम?
लेट्स लुक एट द वेदर ऑफ साउथर्न इंडिया। Chennai is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature is 28 degrees Celsius and maximum will be around 37 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature is 21 degrees Celsius and maximum will be around 30. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 24 degrees and a maximum of 34 degrees Celsius. Also, let's have a look at the significance of this day. June 15 every year and everywhere is celebrated as the Global Wind Day. It's an international event to raise awareness regarding the importance of wind energy and the power it holds to change the world, improve energy systems and decarbonize economies. Investing in wind energy means spending less money on fossil fuel imports, resulting in a smaller carbon footprint and minimized carbon dioxide for cleaner air on our planet. On this day, we learn not just about how wind power leads to a greener planet, but also about job creation and employment opportunities for many people in this sector.
जी, तो हवा में बहुत क्षमता है पूरे देश की और दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदलने की, और साथ ही साथ देश और दुनिया का मौसम भी हवा के चलते ही बदलता है।
बिल्कुल।
और इस समय गर्म हवा के झोंके उत्तर भारत के तमाम राज्यों में चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इतिहास में दर्ज आज के दिन की कुछ अहम घटनाओं का जिक्र करते हैं। आज के दिन 1846 में अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था। और आज ही के दिन 1878 में दुनिया की पहली चलती फिरती तस्वीर कैमरे में कैद हुई थी।
On this day in the year 1899, Roy Chaudhary Devi Prasad, a modern Indian sculptor and painter, was born. In 1907, Narayan Ganesh Gore, a freedom fighter and socialist, was born at Hindala, Maharashtra. In 1908, Stock Exchange of Calcutta was opened by Baldev Das Daruwala. And in 1937, Kumarshree Inderjeet Singh, a cricketer, was born in Jamnagar.
जी, और 1947 का आज का दिन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। भारत 200 साल की अंग्रेजी हुकूमत की पीड़ा झेलने के बाद जब आजादी के उजियारे की तरफ बढ़ रहा था, तब इसके सामने बंटवारे के रूप में दुख, संघर्ष और टकराव के घनघोर काले बादल भी आ गए थे। देश के बंटवारे को इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक माना जाता है। बंटवारे के दुखद इतिहास में 15 जून इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस ने 1947 में 14-15 जून को नई दिल्ली में हुए अपने अधिवेशन में बंटवारे के प्रस्ताव को इसी दिन मंजूरी दी थी। अंग्रेज आजादी के बहाने भारत को एक ऐसा जख्म दे गए जो कभी नहीं भरने वाला। इस बंटवारे में लगभग 2 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे और लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे।
In 1953, Internal Air Route Corporation of India was established.
1954 में आज ही के दिन यूरोप के फुटबॉल संगठन UEFA यानी यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन का गठन हुआ था।
In 1960, Burdwan University was established in West Bengal. I would just like to add one more. And in the year 1982, Supreme Court ruled that all children, regardless of citizenship, were entitled to public education.
वर्ष 2005 में जमैका के आसफा पॉवेल का एथेंस में 8.77 सेकंड का समय लेकर 100 मीटर फर्राटा दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड बना था। और 2006 में भारत और चीन ने पुराना सिल्क रूट खोलने का निर्णय आज ही के दिन लिया था। वर्ष 2008 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पहली बार अल्ट्रावायलेट प्रकाश का विस्फोट कर बड़े सितारों की अंतिम स्थिति देखी थी। और इतिहास के बाद आज सवेरे कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं, याद करते हैं उन महान लोगों को जिनका आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है। और इस क्रम में सबसे पहले स्मरण कर रहे हैं एक सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका सुरैया को, जिनकी आज जयंती है। सुरैया को हम अपने दौर की सबसे बेहद खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक मानते हैं। इनका पूरा नाम सुरैया जमाल शेख था। सुरैया ने 40 और 50 के दशक में अदाओं में नजाकत, गायकी में नफासत और अपने हुस्न तथा हुनर से हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक नई इबारत लिखी थी। पुराने गीतों को पसंद करने वाले सुरैया के गाये गीतों नुक्ताची है, गमे दिल और दिले नादा तुझे हुआ क्या है को सुनकर उनकी मखमली आवाज में आज भी खो जाते हैं। देवानंद के साथ उनकी फिल्में जीत जो कि 1949 में आई थी और दो सितारे जो 1951 में प्रदर्शित हुई थी खास रही। देवानंद ने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में सुरैया के साथ अपने रिश्ते की बात कबूली थी और वो लिखते हैं कि सुरैया की आंखें बहुत खूबसूरत थीं, वो एक बड़ी गायिका थीं। उनकी प्रमुख फिल्मों में शमा, मिर्जा गालिब, कमल के फूल, अनमोल घड़ी हमारी बात को याद कर सकते हैं।
Also in her heyday, Suraiya was known as Malika-e Husn and Malika-e Adakari. Her most notable portrayal was of Moti Begum in Mirza Ghalib, which earned her critical acclaim. Suraiya's final film release was Rustam Sohrab.
हिंदी फिल्मों में अपार लोकप्रियता हासिल करने वाली सुरैया उस पीढ़ी की आखिरी कड़ी में से एक थीं जिन्हें अभिनय के साथ ही पार्श्व गायन में भी निपुणता हासिल थी और इसी वजह से उन्हें अपनी समकालीन अभिनेत्रियों में सबसे आगे माना जाता था। उनकी गायकी की एक झलक आप तक पहुंचाते हैं।
मौसम और ये तन्हाई, ये मौसम और ये तन्हाई, जरा दम भर को आ जाओ, जरा दम भर को आ जाओ, ये मौसम और ये तन्हाई, यही मौका है मिलने का, यही मौका है मिलने का, लगी दिल की बुझा जाओ, लगी दिल की बुझा जाओ, यही मौका है मिलने का।
And dear listeners, today we also celebrate the birthday of Manika Batra, an Indian table tennis player. She is the top female table tennis player in India and ranks world number 24 in ITTF as of May 2024. She was awarded the Major Dhyan Chand Khel Ratna in 2020. A Commonwealth Games gold medalist, a two-time Olympian and winner of multiple other honours, Manika Batra is one of the true stars of Indian table tennis. Tennis was her first love and she had begun playing with her siblings from an early age. Also, dear listeners, today is the birth anniversary of Lisa Del Giocondo, an Italian noblewoman and member of the Gherardini family of Florence in Tuscany. What's interesting about her is her name was given to the Mona Lisa, her portrait, which was commissioned by her husband and painted by the famous artist Leonardo da Vinci. Little is known about her life, but in the centuries after her life, her painting became most famous.
हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक सज्जाद हुसैन को भी हम आज याद कर रहे हैं जिनकी जयंती है। शास्त्रीय संगीत की झलक उनके धुनों में मिलती है। सज्जाद हुसैन ने अपनी किशोरावस्था में वीणा, वायलिन, बांसुरी और पियानो सीखा। उन्होंने अपने पिता मोहम्मद अमीर खान से सितार सीखा। संगदिल सैया, खेल, हलचल और रुस्तम सोहराब जैसी फिल्मों में अनूठा संगीत देने में सफल रहे सज्जाद दरअसल उस जमाने में पार्श्व गायकों और गायिकाओं के लिए कठिन संगीत निर्देशकों में से एक थे, जिनकी धुनों को निभा पाना सबके हौसले से परे की चीज थी। संगदिल और दोस्त फिल्मों में भी सज्जाद हुसैन की धुनों में सजे गीत आज भी लोगों को गुनगुनाने पर मजबूर कर देते हैं। भारत रत्न लता मंगेशकर ने कहा था कि मैं सज्जाद साहब की संगदिल के गीतों को अपने करियर में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखती हूं। एल दिलरुबा नजरें मिला लगभग ऑफ बीट संगीत का सुंदरतम उदाहरण है। यह फिल्म एक हद तक सज्जाद हुसैन द्वारा संगीतबद्ध सबसे उल्लेखनीय फिल्म के रूप में याद की जा सकती है, जिसमें संगीतकार ने लता जी के अलावा दो अन्य महत्वपूर्ण पार्श्व गायकों में से दो अप्रतिम गीत गवाए थे। इनमें सुरैया की आवाज में यह कैसी अजब दास्तां हो गई है और आशा भोसले की आवाज में अब देर हो गई वल्लाह को याद किया जा सकता है। उनके संगीत से सजे इस गीत को हम आपको सुनवाते हैं।
ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा से निसार है, मुझे क्यों न हो तेरी।
Dear listeners, today is the birthday of Courtney Cox, an American actress, director and producer. She rose to international prominence for playing Monica Geller in the NBC sitcom Friends. And Friends is an evergreen series, so let's listen to the title track from Friends in which she played a great character. I'll be there for you.
No one told you that was gonna be this way.
भारत के सुप्रसिद्ध ध्रुपद गायक जिया फरीदुद्दीन डागर को भी स्मरण कर रहे हैं, जिनकी आज जयंती है। ध्रुपद शैली के गायन को पुनर्जीवित करने में फरीदुद्दीन की अहम भूमिका मानी जाती है। फरीदुद्दीन का जन्म 15 जून 1932 को राजस्थान के उदयपुर में हुआ था, जहां उनके पिता उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह के दरबार में संगीतज्ञ थे। फरीदुद्दीन ने देश विदेश के कई बड़े उत्सवों में अपनी कला का प्रदर्शन किया। उन्होंने संगीत की शिक्षा अपने पिता उस्ताद जियाउद्दीन खान से ली। पिता ने उन्हें ध्रुपद गायन और वीणा वादन में प्रशिक्षित किया। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई से संगीत शिक्षा ली। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें तानसेन सम्मान दिया गया। 1994 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
Today is the birthday of Neil Patrick Harris, an American actor, singer, writer, producer and television host. Primarily known for his comedic television roles and dramatic and musical stage roles, he has received multiple accolades throughout his career. He is also known for playing Barney Stinson on the CBS series How I Met Your Mother. So let's listen to a song from that show sung by Neil himself, Nothing Suits Me Like a Suit.
Picture a world where all the boys and girls are impeccably well-dressed. That delivery guy in a jacket and tie, that puppy in a double breast, that baby suit with mutton chops, that baby with a lollipop, that lady cop who's kinda cute. Nothing suits him like a suit, wingman I can wear.
भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी तारकनाथ दास को आज देश नमन कर रहा है। अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा चितरंजन दास इनके घनिष्ठ मित्रों में से थे। देशभक्ति के रंग में रंगे इन नेताओं के संपर्क में आकर तारकनाथ दास क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए और देश के क्रांतिकारी सिपाही बन गए। उन्होंने अपना अध्ययन बीच में ही छोड़ दिया और अनुशीलन समिति तथा युगांतर पार्टी के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे, लेकिन शीघ्र ही अंग्रेज पुलिस उनके पीछे पड़ी और पुलिस पीछे लग जाने पर युवा तारकनाथ 1905 में साधु का वेश बनाकर तारक ब्रह्मचारी के नाम से जापान चले गए और वहां से दुनिया के तमाम देशों में रहकर भारत के लिए अभियान में उन्होंने हिस्सा लिया।
वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे, बोल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे।
Today is the death anniversary of John Leslie West Montgomery, an American jazz guitarist. Montgomery was known for his unusual technique of plucking the strings with the side of his thumb and for his extensive use of octaves, which gave him a distinct sound. So we are listening to Here's That Rainy Day.
और इसके साथ ही दीजिए अनुमति आज सवेरे कार्यक्रम यही समाप्त करने की, लेकिन आप लगातार सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड.
Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhaga Hindi News Bulletin followed by Morning News in English at 8:15 AM. Thanks for tuning in. Have a superb day.
Namaskar.